हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। कर्मों का परित्याग करने से व्यक्ति क्यों सुखी नहीं होता? क्योंकि हमने पहले भी चर्चा किया, आत्मा के लिए क्रियाशीलता सहज है, क्रिया शून्यता असहज है। तो भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति, इस जगत में व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं, कर्म करने का उद्देश्य बांध देता है। अगर कर्म करने का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है तो व्यक्ति कर्म करने के बावजूद भी उससे निर्लिप्त रहता है, और अगर कर्म करने की उद्देश्य भोग है तो फिर चाहे कितने भी अच्छे कर्म हो बाह्य दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वो हमको बांधते चले जाएंगे। तो लोग प्राय बोलते हैं कि हमें भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है, हम इस जगत में एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस जगत में अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी आप इस जगत में रहेंगे और इस जगत में जगत के दुखों को भोगते रहेंगे। तो बुद्धिमानी यही है कि पुण्य और पाप की आसक्ति को त्याग करके व्यक्ति कृष्ण की आसक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण के लिए कर्म करे, कृष्ण को दान करे, कृष्ण को भोग लगाए, और उसके द्वारा वो बड़ी आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक और बात है, भक्ति आसान इसलिए है क्योंकि भक्ति में कुछ नया नहीं सिखाया जाता है, केवल वही कर्म जिन्हें हमें करना स्वयं पहले से आता है उसे भगवान से जोड़ना होता है। जैसे हम बोलते तो है ही तो भगवान के लिए बोलना सीखते हैं, हम सुनते तो है ही भगवान के लिए सुनना सीखते हैं, जिज्ञासा करते ही हैं भगवान के संबंध में जिज्ञासा करना चाहिए, करते हैं भक्ति में, खाना खाते ही हैं लेकिन भगवान को अर्पित करके पाए। तो आप देखेंगे क्रिया में परिवर्तन नहीं है, लेकिन खाली उद्देश्य चेंज करना ही सीखा जाता है, और ये उद्देश्य काल्पनिक नहीं है, भगवद गीता पर आधारित है। और जब इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य कार्य को करते हैं तो बड़ी आसानी से अपने हृदय के अज्ञान को नष्ट होता हुआ हम समझ पाते हैं। प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो पहले दिन से ही है लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं तो फिर वो बात और क्लियर होने लगती है। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य के दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्य की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पश्च नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसी भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावना मृत्य कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। कुछ चीजें हम चर्चा करेंगे। एक, कि मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं ये जानने के लिए कि ब्रह्म क्या है। उनको पता नहीं रहता लेकिन अध्ययन करते हैं कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, और इस प्रकार से वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को भोगों से दूर रखने का प्रयास करते हैं। एक जब एक वैष्णव सन्यासी की बात हो रही है तो इसका अर्थ केवल ये नहीं समझना चाहिए कि सन्यास जिसने ले लिया है, जो घर को छोड़ दिया है। भगवान इस बात को यहाँ पे उन्होंने बताया था, गेया सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति कौन से आश्रम में है, वो नित्य सन्यासी है अगर वो ये समझ लेता है कि सब कुछ भगवान का है और उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। तो वैष्णव सन्यासी का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। वैष्णव सन्यासी का अर्थ वैष्णव सन्यासी तो है ही, लेकिन रियली वैष्णव सन्यासी का अर्थ ये है कि जो मन बुद्धि मन से वचन से कर्मों से कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो इसलिए व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो सकता है लेकिन उसको हम वैष्णव सन्यासी बोलेंगे, ड्रेस चाहे उसने कोई भी ले रखी हो। और इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पांचरात्र की विधि से वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और ये बहुत आसान है। देखिए इस जगत में हम केवल चिंतन ही नहीं करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, स्नान करते हैं, इस प्रकार से बातचीत करते हैं। तो एक भक्त के जीवन में विविध क्रियाएं हैं जिसके द्वारा उसका मन विविध भगवान के संबंध में विविध क्रियाओं में वो फंसा रहता है, और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उसके पास अनेक अनेक आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। भगवान के लिए फूल माला बना सकता है, भगवान के लिए भोग बना सकता है, भगवान के लिए सब्जी लेने के लिए जा सकता है। ये सारी क्रियाएं आध्यात्मिक हैं, या भगवान के लिए अकाउंट्स मैनेज कर सकता है। कुछ भी क्रिया ये कर रहे हैं इसे आध्यात्म कर्म बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। इस बात को भगवान सातवें अध्याय में बोलेंगे, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम चाहिए विधु ना क्षमा कीजिएगा, उसमें बोलते हैं अध्यात्म कर्म चाखिलम, आखिरी में श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो कर्म है वो आध्यात्मिक कर्म है क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में है। जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए बिल्डिंग बना रहा है तो वो बिल्कुल भौतिक कर्म है, लेकिन अगर वो मंदिर बना रहा है भगवान की का गुणगान करने के लिए तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक कर्म है, बल्कि वो ईंटें भी स्पिरिचुअल हो जाती हैं। जैसे कोई फूल मैं अपने किसी मित्र को देना चाहता हूँ उसके भोग के लिए तो वो भौतिक कार्य है, वो फूल भी भौतिक है, लेकिन जैसे ही हम उस फूल को भगवान के लिए सोचते हैं कि भगवान के लिए मैं तोड़ूंगा तो वो तुरंत आध्यात्मिक हो जाता है। प्रभुपाद जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैटर रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल नेचर व्हेन इट इज एंगेज इन कृष्णा सर्विस। जैसे ही पदार्थ को भगवान की सेवा में लगाया जाता है वो तुरंत ही अपने आध्यात्मिक गुणों को धारण कर लेता है। तो इस समय में समझ में आना चाहिए कि जो जो पदार्थ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी जिन वस्तुओं से बना है उसमें वो पदार्थ ही रहता है, लेकिन फंक्शनैलिटी में यानी क्रियात्मक रूप से वो आध्यात्मिक होता जाता है। जैसे कि प्रसाद है तो प्रसाद को अगर ऐसे खराब जगह फेंक दिया जाएगा तो वो भी सड़ने लग जाएगा, तो उस दृष्टि से तो उसमें परिवर्तन नहीं आ गया, उसमें भी उतने विटामिन प्रोटीन रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है क्योंकि वो आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है, तो उसको ग्रहण करने से हमारी चित्त भी स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है तो उसके शरीर में भी बीमारी आ सकती है, लेकिन क्योंकि शरीर से भगवान की सेवा कर रहा है तो उसका शरीर स्पिरिचुअलाइज होता चला जाता है, उससे वो बनता नहीं है। तो फंक्शनैलिटी में अंतर आने का अर्थ ये है कि उन वस्तुओं को उपयोग में कर रहा हूं जो भगवान के संबंध में है, जब मेरा वाणी है, मेरा शरीर है, कुछ भी है, तो वो मुझे इस जगत से बांध नहीं रहे। भले ही बाह्य दृष्टि से वो शरीर मेरा भौतिक लगे और वो क्रिया भौतिक लगे, लेकिन वो क्रिया मुझे इस जगत से मुक्त करती जा रही है। और इसका अनुभव हम स्वयं अपने हृदय में करते हैं, भोग की लालसाओं की कमी होने होती जाती है और भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान हृदय में और अधिक प्रकट होता चला जाता है। तो इसके लिए हमें केवल चिंतन करने की जरूरत नहीं है भक्तों को कि क्या ब्रह्म है, मैं किस प्रकार से शरीर नहीं हूँ, ये सब करने के बजाय सीधे बस भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति के द्वारा अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करके वो निश्चित रूप से भगवान के पास पहुँच जाएगा। और जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसके लिए आश्वासन है, तो आश्वासन भगवान स्वयं दे रहे हैं, यत करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी करो, तुम जो कुछ भी दान दो, तुम कुछ भी खाओ, वो मैं उसको समर्पित करूँ, तो क्या हो जाएगा, शुभ अशुभ फलेरव मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैशसी। तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त होकर के मुझको प्राप्त करोगे। तो ये आश्वासन भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं, तो फिर हमें और डाउट करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए व्यक्ति को शुष्क चिंतन में लगने की बजाय कि हम किस प्रकार से शरीर नहीं है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और प्रभुपाद एक और बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो मायावादी लोग हैं कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और उसके बाद पराया मायावादी लोग हॉस्पिटल खोल लेते हैं इस मिथ्या जगत में। तो अब बताइए, स्वप्न में कोई आदमी अस्पताल खोल रहा है तो उसके अस्पताल खोलने का क्या महत्व है। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है, और दूसरी तरफ जगत की वो सेवा करने में लग जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप ही है सेवा करना। हम सेवा के द्वारा ही सुख प्राप्त करते हैं, हम लोग आनंदमय हैं और सेवा के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे तो कब तक रूम में बैठ के पढ़ता रहेगा, उसे अपने मित्र चाहिए जिनसे वो बात करे। तो अगर व्यक्ति सेवा नहीं मिलती भगवान की, तो फिर भले ही वो कितना कहे कि भौतिक जगत माया है माया है माया है, वो इस माया माया जगत की ही सेवा में लग जाएगा। बल्कि भगवान के भक्त से बिल्कुल विपरीत है, वो समझते हैं कि जगत माया है लेकिन भगवान की शक्ति है, और जब ये भगवान की शक्ति सेवा में उपयोग होती है तो ये सत्य है, ये सिद्धांत है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बोला है कि जगत में किसी भी वस्तु का संबंध अगर भगवान से नहीं देख रहे हो तो ये माया है। ये जगत की वस्तुएं माया नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फोन नहीं है मेरे सामने, या मेरे पास खिड़की नहीं है, या घर नहीं है। इनका संबंध मैं अगर भगवान से अलग देख रहा हूं तो ये माया है, ये मेरा ज्ञान है। और अगर जब मैं देखूंगा कि ये भगवान से संबंधित नहीं है तो फिर मैं इन्हें अपने भोग के लिए देखूंगा। तो इसलिए भगवान यहां बोल रहे हैं कि भक्त जो हैं वो कृष्ण भावना के कार्य में लग करके बड़ी आसानी से मुक्त हो जाते हैं। और एक शब्द भगवान ने यहाँ पे यूज किया है, अचिरेणादि गच्छति नचिरेणादि गच्छति। बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला, एक जन्म में हम भगवान के पास जा सकते हैं अगर हम अपने सारे कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित करें और हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। तो ठीक है, किस प्रकार से हम एक व्यक्ति कार्य करता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भक्त किस प्रकार से कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्ण।